अब आगे से उस कौम का जिक्र है जिसके नाम पर इस सूरत का नाम सूरत हिजर है। वइन काना असहाबुल अय्कति लज़ालिमीन, और बेशक बन वाले भी जालिम थे। अय्का के लफ्ज़ को आप दो तीन तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं, एका वाले भी जालिम थे, बन वाले भी जालिम थे, और जंगल वाले भी जालिम थे। असहाबुल अय्का से मुराद अहले मदीन है, कौम शुएब का ये दूसरा नाम है। किसी जगह रहते थे तो वहाँ जंगल होंगे, तो इस नाम से भी इनको तशबीह दी गई। हज़रत शुएब की कौम थी। यहाँ इस कौम का जिक्र तो हुआ लेकिन हज़रत शुएब का नाम नहीं आया, क्यों? इसकी वजह कि यहाँ सब कौमों का जिक्र अम्बाउर रसुल की सूरत में आ रहा है, ना कि नबियों की कहानी की सूरत में। क्या किया था इन्होंने, हम पीछे पढ़ चुके, सूरत अल अराफ में पढ़ चुके, सूरह यूनस में पढ़ चुके, सूरह हूद में पढ़ चुके, और अब क्या कह दिया, फन तकमना मिनहुम, तो हमने इनसे भी इंतकाम लिया। अल्लाह अकबर। लफ्ज़ इंतकाम हम उर्दू में भी बोलते हैं, नून काफ मीम इसका रूट होता है। नकीमा होता है किसी के नक्शे कदम पे चलना। तो इंतकाम क्या है, जो बुरा अमल होता है ना उसके नक्शे कदम पे चलते हुए उसकी पकड़ आती है, यही कह लीजिए। यानी लफ्ज़ इंतकाम के अंदर मानी छुपा हुआ है कि जो लोग करेंगे वही भरेंगे। और जब अल्लाह के लिए मैं ये लफ्ज़ पढ़ती हूँ तो मेरा ऐसे दिल हिल जाता है कि अल्लाह की ज़ात जब किसी से इंतकाम ले तो वो कैसा इंतकाम होगा। देखिए अल्लाह सुब्हान तआला अमूमी तौर पर रहीम है, अल्लाह सुब्हान तआला की अमूमी सिफत अर्रहमान है। अल्लाह सुबहाना तआला आम तौर पे, जिसको अपने बंदों की ज़ुबान में आप कह लीजिए कि अल्लाह तआला आम तौर पे बहुत खुश रहते हैं, लेकिन जब लोग अल्लाह को गुस्सा दिलाते हैं और अल्लाह तआला की दी हुई हिदायत पे अमल नहीं करते तो फिर अल्लाह तआला का इंतकाम उभरता है। और इंतकाम कौमों के साथ एक दिन में नहीं हुआ, कितने साल की कोशिशों के बाद जब नबी की नाकदरी करते हैं तो अल्लाह कहते हैं फिर फन तकमना मिनहुम। وَإِنَّهُمَا لَبِ إِمَامٍ مُبِينٍ, और ये दोनों बस्तियाँ भी खुले रास्ते पर वाक़े थी। पीछे कौन सी बस्ती थी कि जिसके लिए कहा कि वो खुली जगह पे थे, कौमे लूत। और ये भी बस्ती इन्नहुमा, दोनों मुराद क्या है कि वही तिजारती शाहरा जिसका जिक्र ऊपर हुआ, असाबे हिजर के जो घर थे इनसे भी ये जगह पास थी। तो अहले मदीन की आबादियाँ और कौम लूत की बस्तियाँ दोनों बिल्कुल हाईवे पे थीं। ये जो अल्लाह से ना लबी इमाम मुबीन, ये कौन सा इमाम है, जिसको इंग्लिश में यहाँ पर मैं कहते हैं हाई रोड, यहाँ आप हाई रोड कहते हैं, और अगर आप अमेरिका में हों तो हाईवे कहते हैं, बड़ी बड़ी जो रोड्स होती हैं। पाकिस्तान में हों तो आप उसको क्या कहते हैं, शाहरा, शाहरा कायदीन, शाहरा रेशम फला। तो गोया कि ये कोई छोटे मोटे दबे दुबे इलाके नहीं थे, ये बहुत बड़ी बड़ी खुली खुली जगहों पे थी, यानी ओपन प्लेसेस पे थी, यानी अल्लाह ने इनको फुल एक्सपोजर दिया था। लेकिन इन्होंने अपनी उस सारी चीज़ों का मिसयूज़ किया, बेनिफिट नहीं लिया उसका। तो नतीजा क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने इनको उठाकर रख कर दिया। यहाँ से आप देखिए कि अल्लाह सुबहाना ताला का मिजाज समझ आता है कि अल्लाह ताला लोगों को पहले काम करने के फुल मौके देते हैं। ये जो लफ्ज़ लबी इमाम मुबीन है ना, ये सिर्फ़ एक सड़क पे होने को ना लीजिए, आज की ज़ुबान में आप कह लीजिए कि ये एक बहुत उभरी हुई कुव्वत थी, सुपर पावर थी, बड़ी ताकत थी। अल्लाह सुबहाना ताला ने इनको सब कुछ दिया था, लेकिन हुआ क्या, जब अल्लाह ताला किसी कौम को ज़्यादा दे देता है ना तो वो ख़ुद को अल्लाह से भी बेनियाज समझने लगते हैं। कौमे लूत हो या कौमे मदियन हो, दोनों में देखिए अल्लाह ने इनको अपने वक्त के बेस्ट रिसोर्सेज दिए लेकिन इन्होंने उसका मिसयूज़ किया। दोनों के साथ फन तकमना, हमने इंतकाम लिया। क्या इंतकाम था अल्लाह का, कि जब इन कौमों में किसी किस्म की खैर की कोई रमक बाकी ना रही तो अल्लाह ने इन पर अपने अजाब का कोड़ा बरसा दिया। इन्ना रब्बक लबिल मिरसाद, तुम्हारा रब घात लगाए हुए है। अल्लाह ताला कहते हैं फसब अलैहिम रब्बुका सौत अजाब, फिर तेरे रब ने उन पर अजाब का कोड़ा बरसाया। तो याद रखिए कि हर इंसान के दिल में अल्लाह की मार्फत का एक पायलट फ्लेम होता है, चूल्हा जलाने से पहले पायलट जलाते हैं ना। जब इंसान नेकियां करता है तो उसी से ये मार्फत यकीन में बदलती है और उसकी पूरी ज़िंदगी खुदा रुखी हो जाती है। और ख़ास तौर पे वक्त का नबी जब उसके अंदर इंसान के मदद कर रहा हो तो सोने पे सुहागा। लेकिन जब लोग बदामालियों में मगन हो जाएं तो एक वक्त आता है कि वो पायलट फ्लेम भी बुझ जाता है, और ये पायलट फ्लेम का बुझना गुमराहियों के खड्डों में गिरने के बराबर होता है। ऐसे लोग कभी भी ना तो खुद अल्लाह की बात मानते हैं और ना नबियों को अल्लाह की बात मानने देते हैं, और ऐसे लोगों के बारे में आता है कि ये थोड़े नहीं थे। रिवायात में आता है कि 4 लाख लड़ाई के काबिल आदमी इस कौम में थे। जब इन कौमों के खंडरात उठाए गए तो 20,000 कब्रें वहाँ से डिस्कवर हुईं। मिस्र से शाम तक आने का सिर्फ यही रास्ता था, कुरैश भी इन्हीं रास्तों से गुजरते थे। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये लोग वहाँ मौजूद थे। और यहाँ जो असहाबुल ऐका की बात है ना, जंगल के बसने वाले, दरख्तों का झुंड कहते हैं ऐका को। तरतीब के अतबार से भी देखें तो कौम शुएब जो है वो लूत अलैहिस्सलाम के बाद में आई, और शहर मदियन, पीछे याद होगा आपको जिक्र हुआ था, इब्राहिम के तीसरे बेटे मिद्यान की नस्बत से मदियन कहलाया, हिजाज के कबील। और नबी कौन सा आया था? खतीबुल अम्बिया, जिसको इतना अच्छा बोलना आता था लेकिन अच्छी बातें हर एक को फ़ायदा नहीं देती। सूरत शोरा आयत 176 में कौम का ये नाम भी आया दोबारा, कज़्ज़ब अस्हाबुलैकतुलमुरसलीन, या कज़्ज़ब अस्हाबुलैका, झुटलाया ऐका वालों ने पैगम्बरों को। जुल्म क्या था इनका? नाप तोल में कमी थी। और ये जो लफ्ज़ है ना, बी इमाम इम मुबीन, इसको भी समझ लीजिए। इमाम लफ्ज़ से है, हमज़ा मीम मीम, इरादा करना। इमाम वो होता है जिसकी तरफ इरादा किया जाए। इमाम को देखते हैं ना, वो क्या कर रहा है, नमाज़ पढ़ा रहा है, रुकू कर रहा है, सजदा कर रहा है, तो आप भी करेंगे। माँ को भी क्यों कहते हैं कि हर काम में लोग माँ की तरफ इरादा करते हैं, जिसको फॉलो करें। ठीक भी कह सकता है तो ठीक भी करेगा, लोग ठीक कर लेंगे, गलत भी बताए तो वो भी इमाम है। इसीलिए यहाँ फिर रोड को इमाम क्यों कहा गया कि रोड जो होती है वो भी तो हमें रास्ता दिखाती है। इस रोड के साइंस को फॉलो करके तो हम सफ़र कर रहे होते हैं। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं ये ऐसी कौमें थी कि जिनकी खंडरात थे, इनके अंदर वही हालात है कि जो आपने आपको रखे। और आपको पता है कि लोगों ने आज इनकी यादों में क्या बनाए हुए हैं? कसिनोस, जिना खाने बनाए हुए हैं। कभी आप किसी को कब्रिस्तान में जाकर कोई फहाशी का काम करता देखेंगे? तो ये जो खंडरात होते हैं ये क्या है? ये भी तो कब्रिस्तान है ना, ये तो पूरी की पूरी कौमों की तबाही की एक अलामत बन जाती है। लेकिन याद रखिए, जब दिल मुर्दा होते हैं तो हक और बातिल का फ़र्क ही मिट जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला अगली आयत में, आयत 80 से, वलकत कज़्ज़ब अस्हाबुल हिजरिल मुरसलीन, और इसी तरह हिजर वालों ने भी मुरसलीन को झुटलाया। ये है इस सूरत का नाम। अस्हाबुल हिजर से मुराद कौम समूद है। कौम समूद हिजर के इलाके में आबाद थी। इनकी तरफ हज़रत सालेम मबूस किए गए, जैसे हज़रत हूद की कौम में कौम आद का जिक्र सुराख आगे हम पढ़ेंगे। अहकाफ़ एक सूरत भी आ रही है, उस नाम से सूरत अहकाफ़ है। आप कह सकते हैं कि सूरत अल अहकाफ़ कौम आद का दूसरा नाम है, ये उनकी कहानी है। तो यहाँ सूरत अल हजर कौम समूद का दूसरा नाम है, और ये दोनों बिगड़ी हुई कौमें थी अपने वक्त की। मुरसलीन की बात से पता चलता है कि इन्होंने अपने नबी को तो झुटलाया लेकिन पहले अम्बिया को भी झुटला दिया। वातैनाहुमा यातिना फ़कानु अन्हा मोरिदीन, और हमने इनको अपनी आयात अता की लेकिन वो इनसे एराज ही करते रहे। क्या निशानियाँ मिली थी इनको? ऊँटनी, नाकतुल्ला, और कोई निशानी नहीं। ऊँटनी तो एक बहुत छोटी सी निशानी थी जो इन्होंने मांगी, उनको मिल गई। लेकिन अल्लाह की आयतें 7 किस्म की होती हैं जिसको लोग मुख्तलिफ औकात में झुटलाते रहते हैं। इन्होंने कौनी निशानियों को भी झुटलाया, कायनाती निशानियों को भी, और अल्लाह से मांगी हुई नाका को भी हलाक करने की कोशिश की। अल्लाह ताला कहते हैं लोगों का हाल क्या होता है कि जब उनको निशानियाँ मिल जाती हैं तो वो मुंह फेरते हैं। ये जो लफ्ज़ है ना, मोरिदीन, मोरिद की जमा है, मुफ़ैल का वजन है, मुंह फेरने वाला। वकान यनहितून मिनल जिबाली बुयूतन आमिनीन, और वो पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे अमन और सुकून के साथ। इनका काम क्या था कि पहाड़ों को तराशते थे, यानी जैसे कार्व करते थे, कार्विंग, और उसके बाद उसमें घर बनाते थे आज भी ये घर मौजूद हैं, आपको तस्वीरें दिखाई जा चुकी हैं पहले, लेकिन जब इनकी पकड़ आई फ़ज़त हमस सैहत हमस बहीन, तो इनको पकड़ लिया एक चिंगाड़ ने सुबह के वक्त। सुबह उठे तो एक ज़ोरदार आवाज़ ऐसी आई कि जिसने इनके कलेजे बाहर कर दिए। फमागनान हम माँ कानू यकसिबोन, तो कुछ काम ना आ सका इनके जो कुछ वो कमाते थे। खुशहाल कौम थी, खाती पीती कौम थी, माल और असबाब था, लेकिन इनको अल्लाह के अजाब से बचाने के लिए कुछ फ़ायदा ना हुआ। ये होता है इंजाम लोगों का जब लोग अल्लाह की नाफरमानियों के साथ जीते हैं। ऐसे लोग हैं कि जो करते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि इनको अस्हाबुल हिजर क्यों कहते हैं? तो देखिए, हिजर हजर से है। हजर किसको कहते हैं? पत्थर, हजरे अस्वद, पत्थरों वाला इलाका, माउंटेन्स थे वहाँ, पहाड़ी इलाके में यह कौम आबाद थी। एक वादी थी जिसके चारों तरफ पहाड़ थे। सूरत शोरा आयत 141 में भी अल्लाह ताला ने इनका ज़िक्र किया। और कौम हिजर जो थी ये तामीरात में माहिर थी, बिल्डर्स थे आप कह लें अपने दौर के, बड़ी बड़ी इमारतें बना लेते थे। और ऐसे काम जो करते थे उसके बाद नतीजे में अल्लाह ने पकड़ा। आप देखिए, लफ्ज़ कानू आया है अरबी ज़ुबान में, कानू ऐसे ही है जैसे इंग्लिश में दे वर, यानी माजी इस्तमरारी, कर रहे रहे, करते ही रहे थे, उनको मज़ा आता था इस काम में। और ये जो लफ्ज़ है ना, यन ही तून नहता से, नून हा ता, तराशना, कार्विंग करने को कहते हैं। बेफिक्रे लोग थे, आमिनीन से पता चल रहा है आमिन की जमा, और आमिन का मतलब है अमन में रहने वाला, मुराद ये कि केयरलेस पर्सन, कोई फिक्र नहीं, बेफिक्र खाओ पियो मज़ा करो। बहुत खुशहाल कौम थी, ना इनकी इकोनॉमी का मसला था, ना बिजली गैस का मसला था, यानी बहुत वेल ऑफ किस्म के लोग थे। लेकिन जब अल्लाह की तरफ से पकड़ आई तो सही आई, सिर्फ एक चीख आई और इनके घर कब्रिस्तानों में बदल गए। ये तीसरी कौम है जो चीख से मरी है। अब देखिए, चीख ना नज़र आती है ना आप उसको रोक सकते हैं, कितनी अजियतनाक मौत होगी। कान फटते ही जा रहे हैं, फटते ही जा रहे हैं, कहाँ जाएं भाग के। देखिए ना, बारिश होगी तो आप किसी छत के नीचे पना ले लेंगे, आंधी भी आएगी तो चले दरवाज़े बंद करके अंदर तो बैठ जाएंगे, लेकिन चीख की आवाज़, अभी यहाँ शोर मच जाए तो क्या होगा, सर दर्द करने लगेगा, और अगर बढ़ते बढ़ते कानों के पर्दे फट जाएँ। असल में अल्लाह की कुदरत का इजहार था कि जिसे जैसे चाहे उसको वैसे ही मार सकता है। और मुसबहीन सुबह सुबह हुआ, एक और मुमासलत, सुबह का सुहाना वक्त इनके लिए अजाब का भयानक वक्त बन गया। आप देखिए, किसी बस्ती की इमारत और उसकी कुव्वत का इजहार वहाँ के घरों से होता है। आज भी अगर किसी मुल्क में आप जाएँ तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं, वहाँ की बिल्डिंग्स, रोड्स कैसी हैं, क्या हैं, और जिसकी वो टूटी हुई हों ख़राब तो आप कहेंगे ये कमज़ोर मुल्क है। लेकिन किसी मुल्क में जाएं, बहुत खूबसूरत घर, सड़कें, बिल्डिंग्स, पंप एंड शो, तो आप कहेंगे वाह कितनी कामयाब, कितनी तरक्की याफ्ता कौम है। अब आप देखिए कि इन लोगों के घर कैसे थे, बड़े बड़े, लेकिन क्या इतने खुशहाल लोग, इतने पुरासाइश माहौल में रहने वाले लोग बचे, एक चीख से मरेंगे। बेहतरीन नक्शा कशी की है अल्लाह ताला ने, आगे तीसरे बारे में आप पढ़ेंगे। कज़्ज़बत समूद भी तग़वाहा इज़ बाशा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि वसुक़्याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदमा अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम फ़सव्वाहा। सिर्फ आखिरी आयत को देखना, फदम दमा अलैहिम रब्बू, फिर उनके रब ने उनको यूं तबाह किया उनके गुनाहों के साथ, सवाहा हमवार कर दिया, यानी सब आसमान को छूती हुई इमारतें जो थी वो ज़मीन बोस हो गई, पैरेलल कर दिया, जैसे बिल्डोज़र फिर जाते हैं और वो सब कुछ चल पड़ते हैं। आज क्या हालत है, बस अब हम बहुत बड़े बड़े घर और बहुत ऐसी तामीरात बनाकर फ़ख्र करते हैं। आज तो टूरिज़्म का दौर है, लोग टूरिस्टों को माइल करने के लिए इस किस्म के घर बनाते हैं, ऐसी बिल्डिंग्स कि जिसको देखकर लोग बाहर से आएँ। लेकिन फमागनान हो, ये माजी की मुसलमान कौमें थी, याद रखिए, अगर ये नहीं बची, अगर आज भी मुसलमानों के ऊपर अल्लाह की पकड़ आई तो याद रखिए कोई दुनियावी तरक्की इंसान के काम नहीं आएगी। और ये भी जहन में रखिए कि अल्लाह काफिर कौमों को नहीं पकड़ता, आपके कुफर के साथ किसी पर अजाब आ जाए कभी भी नहीं आएगा। इतनी सदियों से आप देखिए लोग कुफर के साथ कसिनोज़ बनाए हुए और न्यूड कैंप्स बना के बैठे हुए, अल्लाह की पकड़ नहीं आती। अल्लाह की पकड़ सिर्फ मुसलमान इलाकों में आती है जहाँ लोग नाम का इस्लाम रखें लेकिन काम सारे वो करें जिससे अल्लाह ताला को गुस्सा दिलाया जाए। तो यहाँ पे कौमों का तذکرہ जो है वो पूरा हुआ। अब यहाँ से ख़ात्मे सूरत की आयतें कि जिसमें हम सबको एक बहुत ही खूबसूरत पैगाम दिया जा रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाते से। और आप देखिए कि जब भी अंबिया कराम की किस्सों पे सूरतें चलती हैं तो आप मुसलसल कई सूरतों में यही देख रहे हैं कि आखिरी आयतें बल्कि आखिरी पूरे का पूरा रुकू जो होता है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब किया जाता है इसमें, और आपको बताया जाता है कि किस तरह से ये माजी के लोग जो थे जिन्होंने इस तरह के काम किए और इनका ये अंजाम हुआ तो बाद में दूसरों का क्या होगा। और ये सारी बातें सुनते वक्त हम सबको अपना मुहासबा भी करने की ज़रूरत है। तकरीबन 15 आयतें हैं, आप कह लीजिए कि दीन की दावत के एतबार से बेहतरीन रुकू है ये। क्या हालात हैं, कैसे किस मौजू को टच करना है, और यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो हालात थे उसी को सामने रखा जा रहा है इसमें। क्योंकि जब लोग दीन के काम को एक बेगार का काम समझ लें और इसको बिल्कुल ही रंग में भंग की बात कर लें तो अल्लाह ताला कहते हैं कि नबी आपके ऊपर जो जुल्म और सितम टूट रहे हैं इनको पता ही नहीं है। क्या पता नहीं है कि इस दुनिया में भेजे जाने का मकसद क्या है? ये तो मस्त हो गए इस दुनिया में और आपने आकर इनको एक ऐसी ज़िंदगी की दावत दे दी जिसमें हर वक्त मिशन सामने है, तो इनको तो समझ ही नहीं आती कि ये सब क्या होगा। तो एक दफ़ा इनको पैगाम दे दो। क्या खूबसूरत आयत है, और ये मज़मून जहाँ भी आएगा आप इंजॉय करेंगे कि वमा खलकना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिलहक, और हमने नहीं तख्लीक किया आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है मगर हक के साथ। ये दुनिया फन प्लेक्स नहीं है, खेल तमाशा नहीं है, दीवाने की दीवानगी नहीं है। पर अगर आप हिंदू जुबान में बात करें तो ये राम की लीला नहीं है। आप देखिए कि हिंदुओं में तसव्वुर क्या है कि ये दुनिया राम ने बनाई खेलने के लिए। इनका एक मारूफ त्यौहार भी होता है राम की लीला, सीता पूरी। मैंने एक तफरी के मौजू पे लेक्चर दिया था तो उसमें इनकी हिस्ट्री पढ़ के सुनाई थी कि जो इनका मिथ है कि ये दुनिया ऐसे ही भगवान बैठा हुआ था और वो बेकार था, फारिग था, उसका दिल नहीं लग रहा था। तो पहले तो उसने अपनी महल से अपनी बीवी बनाई नऊज़ुबिल्लाह, फिर उसके बाद दोनों वहाँ रहे, खुश रहे, फिर उन्होंने ये दुनिया बनाई। और कहते हैं जिस दिन राम का दिल भर जाएगा खेल के तो एक लात मारेगा तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इसको वो राम की लीला कहकर उसके पूरे पूरे जश्न निकालते हैं और जो भी इससे मिलती जुलती बातें होती होंगी मुख्तलिफ तरह से लोग मनाते हैं। अल्लाह कहते हैं ये दुनिया ऐसी नहीं है, ये कोई स्टेज शो नहीं है कि बस जब दिल भर गया किरदार ख़त्म, आप स्टेज का सारा डिस्प्ले उतार कर वापस भेज दें, जिसको चाहे तख्त पे बिठा दे, जिसको तख्त पे बिठा दे। नहीं, ये कायनात एक बा मकसद और एक बा मानी चीज़ है। ये वही बात है जो सूरत आल इमरान के आखिरी रुकू में हर तहज्जुद पे आप पढ़ते होंगे कि रब्बना मा खलकता हाज़ा बातिला सुभान का फकीना अज़ाब अन्नार। ए हमारे रब, तूने ये कायनात बेकार पैदा नहीं की, तेरी ज़ात इससे बहुत आला और पाक है, बस हमें आग के अजाब से बचा ले। ये है पहला नुक्ता जो लोगों को समझाना होता है तबलीग के दौरान, ज़िंदगी का मकसद, वट इज़ योर पर्पज़ ऑफ लाइफ। नॉन मुस्लिम्स को तो ये बताना ही चाहिए, आज तो अफसोस की बात है कि मुसलमानों को भी बताने की ज़रूरत है। मुसलमानों की भी ज़िंदगी में इतना फ़न आ गया, इतनी अट्रैक्शंस आ गई कि उनको मकसद भूल गया। याद रखिए बच्चा तब तक माँ का दूध पीता है जब तक आप उसके मुंह को खट्टी मीठी चीज़ें ना लगा दें, क्योंकि जब उसके नए नए टेस्ट लग जाते हैं ना तो फिर वो दूध फीका लगता है। ये कुरान और इसकी दावत और ये सब कुछ आपको तभी मज़े का लग रहा है कि जब आप इसको ले रहे हैं। ज़रा 4 दिन दुनिया में आंखें खोल के जिए और इधर जा और उधर पढ़ और उधर देख और ये कर, आप देखेंगे कि आपके लिए ये रास्ता मुश्किल होगा। ज़िंदगी के अंदर सब कुछ होगा, खुशियाँ भी आएंगी, गम भी आएंगी, कोई बुरी बात नहीं। नबी की एक नहीं 8-8 शादियाँ, 10-10 शादियाँ, एक नहीं 4-4 बच्चियाँ, आपकी मौतें भी साथ साथ चलती रहीं, लेकिन आपके ये सारे काम साथ साथ क्यों चलते रहे? क्योंकि आपने इन मौक़ों को अपने ऊपर तारी नहीं किया। हमारा हाल क्या है, बल्कि ये जुमला लिखिए, मकसद हयात से किसी भी चीज़ को ऊपर तारी कर लेंगे तो मकसद भूल जाएंगे। मिसाल देती हूँ, आप सब यहाँ आए, आप सबके यहाँ आने का एक मकसद है ना, हिदायत, सिर्फ ये मकसद है आपका। मकसद हिदायत था, कुछ तरीके ज़ाबते उसको फॉलो करते हुए आप इसको लेते रहेंगे। अगर आप इस मकसद को सामने रखेंगे ना, तो आप यहाँ आने का भरपूर फायदा लेंगे, कुर्बानियाँ भी देंगे, बर्दाश्त भी करेंगे, क्योंकि नेमत बहुत बड़ी है और कोई अल्टरनेट भी नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं कि चले ये हिदायत नहीं मिलती तो कहीं से गुमराही का नाम हिदायत ले लें। लेकिन जिस दिन ये मकसद भूल गया, तो फिर आपके आने के अंदाज़ फ़र्क हो जाएंगे, आपके बैठने के अंदाज़ फ़र्क हो जाएंगे, आप सीखने की बजाय आप कुछ और सोच लेकर आएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को डिस्प्ले के लिए आएंगे, और आप न जाने क्या कुछ नेगेटिव जज्बे दिल में रखेंगे, हिदायत दूर हो जाएगी, बाकी चीज़ें ऊपर हो जाएंगी। छोटी बच्चियों की क्लास में देखा है, वो सिर्फ इसलिए आती हैं वुमेन क्लासों में कि उनकी दोस्तें वहाँ होती हैं, दैट्स इट। दोस्त नहीं तो हम भी नहीं आते, क्या करना है। कॉलेजेस में लड़की लड़कों की जब मोहब्बतें हो जाती हैं, तो पहली चैटमेट हो रही होती है, तुम आ रहे हो तो फिर मैं आती हूँ, तुम नहीं आ रहे तो मैं नहीं आती, क्योंकि मकसद पे दूसरी चीज़ गालिब हो गई। तो ये बुनियादी आयत है जो आज मेरे और आपके सामने आ गई कि ज़िंदगी का मकसद सामने रख के जीने वालों का लाइफस्टाइल और इस मकसद को पीछे डालने वालों का लाइफस्टाइल दो मुख्तलिफ हैं। और याद रखिए, अल्लाह को मेरी भी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को दुनिया के किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है, और हमें भी किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कब्र में हमने तन्हा जाना है। तो पहली चीज़ अल्लाह अपने नबी को कह रहे हैं, आप क्यों दुखी हैं? दुख था, मैं अल्लाह के नबी के दुख को जैसे महसूस कर सकती हूँ, हो सकता है अभी आप भी ना कर सकें, क्योंकि जब एक इंसान एक एक चीज़ के ऊपर जान मार रहा हो, तो फिर उसको तो इसकी भी तकलीफ़ है ना कि मैं इनको कहता क्या हूँ। मैंने ना तो इनके जाके घरों में बुत तोड़े हैं, ना मैंने इनके लात को लात मारी है, ना मैंने इनके मनात को कुछ कहा है, मैंने तो कभी इनको गुस्सा नहीं दिलाया, लेकिन ये मेरे साथ क्यों दुश्मन हो रहे हैं? इतना मुश्किल दौर था आज के हालात में, आप कह लीजिए वो जब ये आयतें उतर रही थी, कि बिलीव में आप ये कह सकते हैं कि नर्व स्ट्रेस्ड थे अल्लाह के नबी के। आपको इन आयतों को पढ़ के भी फील होगा कि अल्लाह नबी को तसल्ली दे रहे हैं, आपको ज़ाहिर ये गालिब लग रहा है, बातिल ऊपर आ रहा है, फिक्र नहीं करें, हक के रास्ते की मुश्किलें हैं, लेकिन घबराइए नहीं, ये कारजी कैफियत है, ये हमेशा नहीं रहेगी। कायनात का निज़ाम जिस दुनिया पे कायम है ना, जिस असूल पे, वो क्या है कि हमने इसको हक की मदद के लिए भेजा है, बातिल की मदद के लिए नहीं है। कायनात की फितरत हक के साथ मुनासबत रखती है, ना कि बातिल के साथ। तो यहाँ 4 दिन की ज़िंदगी है भी, तो हक ही को पता होगी, इसलिए आप बिल्कुल गम ना कीजिए इनके हालात पे, बस कह दीजिए इनको दूसरी बात, वह इन सात अल आतियतुन, और यकीनन क़यामत आकर रहेगी। कायनात है हक के साथ, और दूसरा बुनियादी रुकन क्या है कि क़यामत आनी है, क्योंकि हक का तकाजा ही है कि जो अच्छा काम करे उसको उसका बदला मिले, जो बुरा काम करे फिर उसको सज़ा मिले। हाँ, जब सज़ा मिलती है तो चीखें हमारी निकलती हैं, बस दिमाग नहीं जाता कि ये सज़ा किस चीज़ की मिल रही है, उस वक़्त फिर हम कुछ और बातें करते हैं। तो क़यामत का आना इस कायनात के प्लान का एक हिस्सा है। ये ऐसे ही है कि आपको इतने तपाक से, इख्तमाम से बच्चे को इम्तिहान दिलाने जाएं यूनिवर्सिटीज़ में, कितनी मुश्किल होती है, आप देखते होंगे अपने बच्चों को जब वो पढ़ते हैं बेचारे, लेकिन रिज़ल्ट ही ना निकले, तो कोई बच्चा जाएगा इम्तिहान देने? पढ़ेगा दो दो दिन रातें जाग जाग के? तो क़यामत का आना अल्लाह ताला की तरफ से ऐन हक है। ये चीज़ लोगों के जहन में डाल दो, कितने दिन मौज करोगे, कितने दिन मस्ती करोगे। और याद रखिए, उस क़यामत से पहले दुनिया में हर बंदे की क़यामत आती है, एक झटका ज़रूर लगता है जिसमें दुनिया में अल्लाह हमें हमारे करतूतों का मज़ा चखाता है, लेकिन फहम हो, अकल हो, समझ हो, तो बंदा समझ जाता है कि ये मेरा ही कोई गुना है, ये कोई मेरी मस्ती है, और ना हो तो उसमें डिप्रेशन में आकर और भी नमाज़ें छोड़ देता है। मैंने लोगों को डिप्रेशन में नमाज़ें छोड़ते हुए देखा, दुआएं छोड़ते हुए देखा है। अल्लाह कहता है छोड़ दो तो छोड़ दो, ऐसे लोगों को पीछे कर दो। मक्का में उनको ये समझ ही नहीं आती थी कि ये हर वक्त अल्लाह 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 की बातें करते हैं और इनके घरों में फाके हैं, ये अल्लाह की बातें करते हैं, इनके अपने बेटे फौत हो रहे हैं, ये अल्लाह की बातें करते रहते हैं लेकिन इनके घरों में चूल्हा भी नहीं जलता। तो अल्लाह इस असूल को बता रहे हैं, फिक्र नहीं करो, ये तुम्हें इस दुनिया का ज़ाहरी फ़र्क समझ आ रहा है, असल बात ये नहीं है। देखिए, हर चीज़ का एक असल होता है और एक नकल होता है। अगर आप और मैं 14 सपारे पढ़ने के करीब आ गए तो हमें वह इसी का समझ ना आए, तो याद रखे सिर्फ कोई बहाना बनेगा हमारे हिदायत से उतरने का, अल्लाह नहीं उतारता कभी किसी को, बहाना बनता है। आप देखिए ना, ड्राइवर गाड़ी में जाता है, सिर्फ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है बैक मिरर में से देखते हुए, वो समझता अभी पिछली गाड़ी दूर है लेकिन गाड़ी सर पे होती है। एक झटका लगता है, दोनों में से एक ज़रूर सड़क से दूसरी तरफ गिर जाता है। तो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात को सामने रखते हुए जो उस वक्त मुसलमानों की कैफियत थी उसको बयान करते हैं और कहते हैं फ़िक्र ना करो, बिल्कुल ये ब्लड प्रेशर लेने का आखिरी वक्त है बस, इसके बाद एकदम रिलीज़ होगा। करो क्या? फसफहसहल जमील। ऐ नबी आप इनसे खूबसूरती के साथ दरगुजर कर दें। ये बड़ी खूबसूरत बात है। ये मुजरिम लोग हमारी पकड़ से बच नहीं सकेंगे, क़यामत आएगी ये अपने कैफरे किरदार को पहुँचेंगे, लेकिन अभी हमने इनको ढील दी हुई है, कुछ देर तक के लिए मोहलत चाहिए। आप इनकी दिल तोड़ने वाली बातें सुन लें, दुश्मनी वाली कैफियत आपको पता भी चल जाए, फिर भी खामोश सब्र जिस खूबसूरत अंदाज से आप सरफे नज़र कर सकते हैं कर लीजिए, इससे आपके दर्जे बुलंद होंगे लेकिन अल्लाह की मदद आपके साथ आएगी। मैं और आप नहीं समझ सकते। इस पे एक पोएम है, अगर आपको मैं बाद में सुनाती हूँ, अगर इसके साथ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा फसफहसफुल जमील किया। यहाँ बस आप उन हालात को देखें कि जो नबी के थे। मुझे तो आज का पूरा सबक पढ़ते हुए तसव्वुर के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो सामने आ रहे हैं कि लोग उनको दुख दे रहे हैं, तकलीफ़ें दे रहे हैं, उनकी वजह से घर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, और अल्लाह के नबी क्या कर रहे हैं, फसफहसफहल जमील, इनके साथ सफ़े जमील का मामला कीजिए। आप देखिए कि ये जो लफ्ज़ है ना सफ़, इसकी तकरार दिख रही है, हथेली को कहते हैं, पाम को कहते हैं, ये जो सफ़ा होता है ना उर्दू में, कभी आपने ये लफ्ज़ सुना, जाने दो, तो सफ़ है कहते हैं किसी बात को इस तरह से जाने दो कि तुम्हें उसका एहसास ही ना हो, अगले को भी ना पता चले कि उसने तुम्हारा किस तरह से दिल तोड़ा है, कि किस तरीके से लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सता रहे थे और नबी जो थे वो उनकी उन बातों से दरगुजर करते हुए अपने आप को इन सारी चीज़ों से दूर कर रहे थे। आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताया गया इस रास्ते में, और कैसा सताया गया इसकी मिसालें आपने और मैंने सीरत में बहुत दफ़ा पढ़ी होंगी। अच्छी तरह ये बात समझ आ जाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो किस तरह से लोगों की बातों पे दरगुजर करते थे। हमारा तो वो इख्लाक ही नहीं, हम तो भी अपनी ज़ात के बुत से नहीं निकले, हमें तो भी अपना आप ही बहुत मुश्किल लगता है, कहाँ हम दूसरों की बातों पे रहें। आप देखिए पिछली आयत के साथ इसका रब्त है, वमा खलकना समा, आसमानों ज़मीन को बेमकसद पैदा ना करने की बात करके बता दिया कि ये दुनिया तुम अपनी मर्ज़ी की नहीं गुजार सकते। आप देखिए कि एक ज़िंदगी होती है जो रब चाही होती है, और एक होती है जो मन चाही होती है। पूरी कायनात रब चाही ज़िंदगी बसर कर रही है। सूरज किसकी मर्ज़ी कर रहा है, चाँद किसकी कर रहा है, फूल किसकी करते हैं, पहाड़ किसकी करते हैं, तो इंसान अपनी करे। 34 में सूरह क़यामत में अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान ये सोचता है कि युथरक सुदा, तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, और सुदा अरबी जुबान में ऐसे ऊँट को कहते हैं जो खुला छोड़ दिया जाए, उसकी रस्सी उसके मालिक के हाथ से निकल जाए। उर्दू में बोलते हैं शुतर बेमुहार, वही है, यानी रस्सी के बगैर का ऊँट। तो जो लोग अपनी ख्वाहिशों पर जीना चाहते हैं ना, वो कहते हैं हमें छोड़ दो, हम नहीं किसी पाबंदी में आते, हमसे ये बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने सूरत के शुरू में क्या कहा, क्या मामला करो इनके साथ, ज़र हम या कुलू व या तमत्ताओ, है ना, इनको छोड़ो, खाने तो पीने तो मज़े करो, एक वक्त आएगा पता चलेगा। लेकिन मोमिन का ये रवैया नहीं होता। पीछे कौम अबुल हजर और असहाब लूत की बात हुई, दोनों को बता दिया कि उनको सज़ा इस बात की मिली थी कि वो अपनी मस्तियाँ करना चाहते थे, और इस दुनिया में इंसान के लिए अपनी मस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है। वही खुशी आपकी खुशी है जो आपको अल्लाह की खुशी के साथ मिले, बस उसके बाद तो निरी नाफरमानी और कुछ नहीं है। तो कहा ऐसे लोगों के साथ खूबसूरत दरगुजर करो, क्यों? इसलिए कि खूबसूरत दरगुजर ही वो रास्ता है कि जिससे लोग फिर दीन की तरफ मायल होते हैं। आप देखिए कि आप दाइये दीन बने ना, लोगों ने तो आज दुनिया के लिए मसनूई अखलाक अपना लिए। कभी एयरपोर्ट्स में से आप गुजरते हुए देखा करें, जब बोर्डिंग पास मिल जाता है तो ड्यूटी फ्री शॉप में जब आप गुजरते हैं, यूँ लहकती भुदकती लड़कियां आपको यूँ माइल करती हैं कि ये परफ्यूम ले लीजिए और ये ले लीजिए, क्यों? क्योंकि ये बाजारी इखलाक है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो काम ही बहुत सारा था, तो लोग अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए अगर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, तो आप बताइए कि नबी के पास तो बेहतरीन प्रोडक्ट। आज मैं और आप इस कुरान के हामिल हैं, अगर हमारी बात दूसरे नहीं सुनते तो इसमें इतना दूसरों का कसूर नहीं है जितना हमारा है। ठीक है, वो तो लगे हुए इस दुनिया के खेल तमाशे में, उनको तो ज़िंदगी वाकई ये खेल मस्ती लगती है। वमा खलकना समा वाली आयत उन्होंने नहीं पढ़ी सुनी, लेकिन मैं और आप तो पढ़ते हैं। इसलिए अपने किरदार को ऐसा बनाइए, कब कहाँ चोट लगानी है, कब किसी से बात करनी है, कब किसी को कोई गिफ्ट देना है, कब किसी की बात को प्यार से सुनना है, किससे कैसे बोलना है। ये चीज़ें थी अल्लाह के नबी की ज़िंदगी की, जिसने दुश्मनों को दोस्त बना दिया।
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل